नमस्कार भारत, 31 दिसंबर दिन रविवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ईरान में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी।
अवाम जानती है कि ईरान के पास पैसा ज्यादा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज सईद के साथ रावलपिंडी में मंच साझा करने वाले फलस्तीनी राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुलाया गया। क्या पद्मावती को पद्मावत करने से फिल्म का विरोध खत्म हो जाएगा?
प्रोड्यूसर डायरेक्टर मानेंगे या नहीं मानेंगे? दूसरी चीज, फिर ये छह लोग जो बच गए, इनको फिल्म दिखाई जाएगी या नहीं? उन छह लोगों ने अगर इसको फिर ऑब्जेक्शन किया तो क्या होगा?
सब विस्तार से होगा, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। ईरान में कई जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिमी शहर दोरूड में कम से कम दो प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई है। देश के उत्तर में मौजूद शहर अबहार में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम नेता आयतुल्ला खामेनेई के एक बैनर में आग लगा दी। माजदाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा ट्वीट में कहा है कि दमनकारी शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। पर्वतारोहियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नेपाल ने माउंट एवरेस्ट समेत अन्य पर्वत शिखरों पर अकेले चढ़ाई करने वालों पर रोक लगा दी है। नेपाल पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पर्वतारोहण को सुरक्षित बनाने के लिए और इस दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए गए हैं। शारीरिक रूप से अक्षम और नेत्रहीनों को जरूरी मेडिकल दस्तावेज के आधार पर ही चढ़ाई करने की इजाज़त दी जा सकती है। इसी साल अप्रैल में स्विट्जरलैंड के जाने माने पर्वतारोही उली स्टैक की मौत एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान हो गई थी। वो अकेले पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे। K2 और कंचनजंगा पर्वत शिखर पर अकेले चढ़ाई कर चुके पर्वतारोही एलन हिंक्स कहते हैं,
I do understand that they are trying to save lives and it was tragic when Uli was killed.
मैं समझ सकता हूं कि वो लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उली स्टेक की मौत दुखद थी। वो एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन किसे पता है कि उनकी मौत कैसे हुई? हो सकता है उन्हें एक पत्थर से चोट लगी हो या बर्फ की आंधी के कारण उनकी मौत हुई हो, लेकिन अगर वो अपने दोस्त के साथ बंधे होते तो दो लोगों की मौत होती। इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं उन पर्वतारोहियों के साथ होती हैं जो अनुभवी नहीं होते। पर्वतारोही एलन हिंक्स के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी पर लगे रोक के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया है। जज ने कहा कि फरवरी में धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद संविधान के तहत राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए नवाल्नी योग्य नहीं है। हालांकि नवाल्नी का कहना है कि ये मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत था और इसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े होने से रोकना था। जज के फैसले पर अलेक्सी नवाल्नी के वकील इवान इज्यानोव ने कहा,
На самом деле это решение было ожидаемо еще по заседанию Центральной избирательной комиссии.
सच कहें तो हमें इस फैसले की उम्मीद थी। जब चुनाव आयोग ने नवाल्नी को राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने से रोका, तभी स्पष्ट हो गया था कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला था, जैसा कि पहले राष्ट्रपति पुतिन ने संवाददाता सम्मेलन में भी कहा था। हम अपील की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अपील्स कोलिजियम और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडियम में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि मतदाताओं को इन चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। ये थे अलेक्सी नवाल्नी के वकील के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। होंडुरास में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अफ्रीका और क्यूबा के 36 प्रवासियों को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि ये प्रवासी करीब 2000 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर वहां से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना चाहते थे। होंडुरास के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इन प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या फिर इन्हें होंडुरास में रहने की अनुमति दी जाएगी। ब्लैक लाइव्स मैटर की कार्यकर्ता एरिका गार्नर की मौत न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में हो गई है। वो 27 साल की थीं। उन्हें बीते सप्ताह दिल का दौरा पड़ा था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव। आज एक बार फिर आपके साथ मैं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत ईरान से, जहां कल लगातार तीसरे दिन सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं और इसके जवाब में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारी भी सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनों के दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस के साथ झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सरकार विरोधी प्रदर्शन ईरान के अलग अलग शहरों में हुए, उनके समर्थन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी लोग सड़कों पर उतरे।
Nous disons en fait la population iranienne c'est un grand peuple aujourd'hui il a montré sa
पेरिस में ये प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि ईरान के लोग महान हैं। आज उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि उन्होंने मौजूदा शासन नहीं चाहिए, वो इस शासन को खत्म कर देना चाहते हैं। ईरान में प्रदर्शनों पर पेरिस में एक प्रदर्शनकारी के शब्द थे ये। ईरान में प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? क्या ये वाकई सरकार विरोधी प्रदर्शन है जैसा कि कहा जा रहा है? और भी कई सवाल उठ रहे हैं ईरान के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, जिनका जवाब तलाशने के लिए मैंने अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान से अब से कुछ देर पहले बात की।
देखिए, ये जो प्रोटेस्ट शुरू है मशहद नाम के शहर से, वहाँ पे इनिशियल जो प्रोटेस्ट थे और स्लोगन्स थे वो इकोनॉमी के खिलाफ थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और लोग बड़े नाराज है कि ईरान सीरिया में पैसे खर्च कर रहा है, यमन में पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन घर पे कोई डिवेलपमेंट नहीं। ईरान फर्स्ट वाला स्लोगन था मशहद। लेकिन जब वो फैलने लगा तो इकोनॉमी के अलावा वो रिजीम चेंज की बात करने चले, ये जो खमेनी के खिलाफ स्लोगन्स और बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक की जो करंट रिजीम है उसके खिलाफ स्लोगनरिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 10-12 शहरों में फैल गया है। और जो शहरों में फैला है वो काफी रिलीजियस शहर है, जैसे कि खोम है, मशहद है।
जो सरकार समर्थक लोग भी सड़कों पर उतरे हैं तीसरे दिन, इसका क्या मतलब लगाया जाए?
ये तो वही प्रैक्टिस जो टर्की में भी इस्तेमाल की जाती है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके एजेंट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कन्वे करना चाहते हैं कि रिजीम को सपोर्ट पब्लिक में है इसलिए। तो लेकिन वो जितने भी अभी तक प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं वो बड़े कम तादाद में हैं। जब से प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तो जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं उनकी तादाद और बढ़ती जा रही है। एक हद तक ये कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट काफी सीरियस हो चुके हैं। 2008-2009 से वहां पे मुसलसिल प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अब जरा नौयत सीरियस इसलिए हो गई है कि दो तीन अहम चीजें हो गई हैं कि ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस थे वो तकरीबन खत्म हो गए हैं, सिर्फ अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस अभी भी लागू हैं, जिसके वजह से ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है वो फुल मैक्सिमम पे जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि तेल की खुद कीमत $40 पर बैरल से $60 पर बैरल हो गई है, यानी तकरीबन 50% ग्रोथ। तो आवाम जानती है कि ईरान के पास पैसा ज्यादा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है। ईरान सीरिया में, इराक में, यमन में, हर जगह इन्वॉल्व है और वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए भी लोग काफी अपसेट हैं।
अच्छा प्रोफेसर मुक्तदर खान, ईरान के इस आरोप में आपको कितना दम नजर आता है कि इन प्रदर्शनों को हवा देने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है?
ये तो खैर सबका स्लोगन आजकल दुनिया में वर्ल्ड वाइड यही हो गया कि फॉरेन हैंड फॉरेन हैंड फॉरेन हैंड। तो ईरान की पॉलिटिक्स में शुरू से ही था, मतलब अमेरिका के सैंक्शंस लागू जो रिजीम हुई है 1980 से, उसका मकसद ही ये था कि इस रिजीम को कोलैप्स किया जाए, रिजीम चेंज अमेरिका का शुरू से लोगन रहा है। अगर आपको याद होगा 2009 एंड 2010 में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के खिलाफ, तो ट्विटर 24 घंटे के लिए कुछ रीसेट करना चाह रहा था और हिलरी क्लिंटन ने इंटरवीन करके ट्विटर को कहा कि जब तक ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्विटर विल नॉट शट डाउन। तो इस तरह से ऑफकोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर से अमरीका, इसराइल और उसके एलाइज तो इस चीज को बढ़ावा देंगे, लेकिन देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर।
ये बताइए प्रोफेसर साहब कि क्या अमरीका ईरान के मौजूदा हालात का फायदा उठाना चाहेगा, उठा सकता है, आपको लगता है ऐसा?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए कि ट्रंप ने ऑलरेडी ट्वीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ईरान गवर्नमेंट को कि सारी दुनिया आप पे नजर रख रही है, तो आप जिस तरह से प्रोटेस्ट को हैंडल करेंगे ये हम देख रहे हैं। ये जो रूहानी जो बने हैं प्रेसिडेंट, ये मॉडरेट कहलाए जाते हैं, यानी इन्होंने तो जो क्लेरिकल रिजीम है उसके खिलाफ कंजर्वेटिव के दबाव के बावजूद इलेक्शन जीते हैं। ये
इसी का जिक्र करने वाला था प्रोफेसर साहब, जो अभी राष्ट्रपति हैं रूहानी साहब, वो उनकी सरकार में कोई इस तरह के फ्रैक्शन है, मतभेद है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शनों को इस तरह से हवा दी जा रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है?
जो ईरान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा कंजर्वेटिव है, उनके पास डेमोक्रेसी है लेकिन बहुत थिन डेमोक्रेसी है, मतलब बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उसके बावजूद रूहानी जो बहुत ही मॉडरेट विंग से आते हैं, वो मतलब अपनी कौम को काफी आजादी देना चाहते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मजहबी, तो उसके बावजूद ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके दो ही माने हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कंजर्वेटिव रिजीम रूहानी के खिलाफ पब्लिक को बहका रही है, लेकिन अगर इसमें कंजर्वेटिव का हाथ होता तो जो प्रोटेस्ट में जो स्लोगनिंग हो रही है वो रूहानी के खिलाफ होती, लेकिन ये सारे प्रोटेस्ट तो खमेनी के खिलाफ हैं। पब्लिक डिमांड कर रही हैं कि ये जो विलायत फकीह का सिस्टम है वो बदल दे। तो शुरू तो प्रोटेस्ट इसीलिए होते कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन अब वो रिजीम बदलने की बात कर रहे हैं।
ईरान में जारी अलग अलग घटनाक्रम और उसके अलग अलग पहलुओं पर ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान। मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के साथ रावलपिंडी में मंच साझा करने वाले फलस्तीनी राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया है। भारत का विरोध और कड़ी आपत्ति को इसकी वजह माना जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी हारून रशीद से बात की।
पिछले फ्राइडे को यहाँ पर जमात-उद-दावा के नेता हैं हाफिज सईद, उन्होंने रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा किया अल-कुद्स यानी यरूशलम के मामले पर, और जो अमेरिका ने अभी फैसला किया हालिया दिनों में उसके खिलाफ। तो उसमें कहा जाता है कि ये फलस्तीन के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी तकरीर की और इसराइल की कड़ी चुनौती की और साथ साथ में इंडिया पर भी तनकीद की, जो इसराइल का उनके मुताबिक सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद लगता है कि काफी दबाव पड़ा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर और उनकी सरकार पर।
यहाँ भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हाफिज सईद जो हैं वो भारत के खिलाफ कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या फलस्तीनी राजदूत जो हैं वलीद अबू अली जिनको बुला लिया गया है, क्या वो भी भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे थे?
देखें, जो तकारीर हुई वो उसमें और कुछ जो मैंने भी सुनी उसमें यही था कि इंडिया को टारगेट काफी किया जा रहा था, बल्कि अगर आप ये कहें कि सारे जो JUD के नेता थे वो इंडिया को ज्यादा टारगेट कर रहे थे बनिस्बत इसराइल के, तो ये कोई बेजा बात नहीं होगी। और हालांकि अगर आप देखें तो अभी ये जो जनरल असेंबली में वोटिंग हुई उसमें इंडिया ने पैलेस्टाइन की सपोर्ट की इंस्टेड ऑफ इसराइल, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। जो JUD के हाफिज सईद भी उस वक्त स्टेज पे मौजूद थे और बाकी नेता जी भी थे और जो एम्बेसडर भी थे वो भी यही कह रहे थे कि इसराइल की सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहे हैं और इंडिया जो है वो यहूदी साजिश का हिस्सा है, तो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे जो मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ ही गया है।
क्या इससे पहले भी जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को कभी किसी देश के एम्बेसडर के साथ मंच साझा करते देखा गया है, या ये ऐसा पहला मसला
नहीं
है?
मेरा नहीं ख्याल हाफिज सईद को किसी उसके साथ देखा गया, लेकिन ये जो फ्राइडे वाली रैली थी ये थी ही अल-कुद्स यानी यरूशलम के मसले पर थी, तो मेरा ख्याल में इस वजह से उन्होंने शायद दावत दी हो फलस्तीन के जो अम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनको कि वो भी उसमें शिरकत करें, तो वो उसमें उन्होंने शिरकत की होगी, लेकिन लगता नहीं है कि ये उनकी जाती हैसियत में कोई फैसला होगा। इसमें यकीनन कोई भी अम्बेसडर किसी भी देश का अगर कहीं जाता है वहाँ के लोकल इवेंट में, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो उस सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी अप्रूवल और वो उसमें ज़रूर होगी, لیکن چونکہ یہ میڈیا میں آ گیا اور اس پر کافی چنوتی ہوئی اور تنقید ہوئی تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب پیلسٹینینز کو یہ ایز اے جیسچر ٹوورڈز انڈیا یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔
یہ تھے اسلام آباد سے بی بی سی اردو سیوا کے سہیوگی ہارون رشید۔
ارے ہم تو فقیر آدمی ہیں، جھولا لے کے چل پڑیں گے جی۔ اور بھائیوں بہنوں، یہ فقیری ہے جس نے مجھے
انٹرنیشنل فقیر آئے ہیں۔
یشونت سنہا بھی ان سے مل گئے ہیں نریندر بھائی، اگر اسی طرح سر میں سر ملتے رہے تو یہ سب اسر حاوی ہو جائیں گے، کچھ تو کیجیے۔
میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے، میں جانتا ہوں۔
بی بی سی ورشانت وشیش میں آج شام 7:30 بجے، دن بھر میں سننا نہ بھولیں۔ نمسکار بھارت میں اب رخ کریں گے بھارت کا۔ فلم پدماوتی آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ویوادوں میں گھری ہوئی ہے۔ کل ویواد کے کچھ بادل چھٹ گئے لیکن آسمان ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوا ہے۔ پوری جانکاری جے پور سے نارائن باریٹ کی رپورٹ میں۔
راجپوتی کنگن میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی راجپوتی تلوار میں۔
چھوٹی سی خاموشی کے بعد سنجے لیلا بھنسالی کی فلم پدماوتی کا وواد پھر سطح پر آ گیا ہے۔ سینسر بورڈ کے پرستاؤ پر اتہاس کے 3 جانکار لوگوں نے فلم کا اولوکن کیا اور کتھا وستو کو اتہاس کے ترازو پر تولا ہے۔ ان سدسیوں میں میوار کے پورو راج پریوار کے اروند سنگھ، اتہاس کی جانکار چندرمنی سنگھ اور کے کے سنگھ کا نام شامل ہے۔ اس فلم کے نرمان کا راجپوت کرنی سینا ورودھ کر رہی ہے۔ کرنی سینا کے سنرکشک لوکیندر سنگھ کالوی نے بی بی سی سے کہا، ابھی سینسر بورڈ کے پرستاؤ پر 6 اور لوگ اس فلم کو دیکھیں گے۔ کالوی نے دعویٰ کیا کہ فلم کا اولوکن کرنے والے ان 3 لوگوں نے اس پر روک کا مشورہ دیا ہے۔ سری کالوی کہتے ہیں ابھی وہ تصویر صاف ہونے کا انتظار کریں گے۔
جن 3 لوگوں نے دیکھی، وہ 3 لوگوں نے سروسمتی سے فلم دیکھنے کے بعد جو اپنا ریئیکشن دیا تھا وہ تھا کہ فلم کو بین کیا جائے۔ آج ابھی سجھاؤ سی بی ایف سی نے پروڈیوسر ڈائریکٹرز کو دیا ہے کہ اس کا نام چینج کیجئے، 26 اس میں کٹ لگائے جائیں گے اور گوبر گانا اس میں سے ہٹایا جائے گا۔ پہلی چیز پروڈیوسر ڈائریکٹر مانیں گے یا نہیں مانیں گے، دوسری چیز پھر یہ 6 لوگ جو بچ گئے ان کو فلم دکھائی جائے گی یا نہیں، ان 6 لوگوں نے اگر اس کو پھر آبجیکشن کیا تو کیا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی بین ہوتی ہے، بین ہونے کی سفارش آ جاتی ہے تو۔ اس لیے اسمنجس پورن استھتی میں ابھی میں اب کیا کہوں اس بارے میں، میں تو اب بھی انوروھ کروں گا پردھان منتری جی سے دیش کی اچھا سمجھتے ہوئے اس فلم کو بین کریں۔
اس بیچ کرنی سینا کے ایک گٹ نے چیتاونی دی ہے کہ اس فلم کو کسی بھی صورت میں پردے پر نہیں اترنے دیا جائے گا۔ میوار کا پورو راجوش چتوڑ کی رانی پدماوتی کا سیدھا ونشج ہے۔ پورو راج گھرانے کے وشو راج سنگھ نے سینسر بورڈ کو چٹھی لے کر فلم کی کتھا وستو پر سوال اٹھائے ہیں۔ سینسر بورڈ کے ادھیکش پرسن جوشی نے پورو راج پریوار سے فلم کے اولوکن کا آگرہ کیا ہے۔ پورو راج پریوار نے سرکار کو بھیجی چٹھی میں فلم کو لے کر بن رہے واتاورن پر بھی چنتا ویکت کی ہے۔ اتہاس گڑھ محلوں، لوک گیتوں اور کتھاؤں میں بھی ہے۔ اتہاس محض کاغذ کے پنوں کی عبارت نہیں ہے، لیکن اتہاس بھی کیا کرے جب کوئی اپنے اپنے ڈھنگ سے اس کی ویاکھیا کرنے لگے۔ نارائن باریٹ، بی بی سی، جے پور۔
اور اب خبر چھاتراؤں کے یون شوشن کی، جس کا سمبندھ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں لکھنؤ کے مدرسے سے ہے۔ مدرسہ سنچالک کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کیا تھا پورا معاملہ بتا رہے ہیں سمیر آتمج مشر۔
لکھنؤ کے سعادت گنج علاقے میں قاری طیب جیا پچھلے 10 سے مدرسے کا سنچالن کر رہے تھے، جس میں لڑکیوں کا ایک ہاسٹل بھی ہے۔ لیکن پولیس کو اس بات کی بھنک 2 پہلے لگی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ خود لڑکیوں نے چٹھی کے ذریعے لوگوں کو آپ بیتی بتائی کہ مدرسہ سنچالک ان کے ساتھ نہ صرف درویوہار کرتے ہیں بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دیتے ہیں۔ پولیس نے مدرسہ سنچالک کو فی الحال گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ لکھنؤ کے ایڈیشنل ایس پی وکاس چندر ترپاٹھی نے بتایا،
مدرسے کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایت کیا کہ یہاں پہ چھاتراؤں کو جبرن بندھک بنا کر کے رکھا گیا ہے، اور اس میں چھاتراؤں کی کئی طرح کی کمپلینٹ یہاں پہ ہیں۔ اس میں اس شکایت کو ترنت گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک جوائنٹ ٹیم بنا کر کے اے ٹی ایم سٹی ویسٹ اور اے سی ایم صاحب ہیں ہماری ٹیم، اور 2-3 سی او اور تھانہ پربھاری یہاں پہ مدرسے پہ ریڈ کیا گیا۔ مہیلا سب انسپکٹرس اور مجسٹریٹس کے دوارا جو چھاتراؤں ہیں ان سے بات چیت کی گئی، پوچھتا کی گئی، تو اس میں جو آروپ جس طرح کے لگائے گئے تھے وہ آروپ काफी सही पाए गए हैं, जो इसके संचालक हैं जिसके खिलाफ मुख्य आरोप लगाया गया था मोहम्मद तैयब जिया, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी मदरसा रजिस्टर्ड था या नहीं था इसकी अलग से जांच जो उसके संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो लोग जांच इसकी कर रहे हैं।
पुलिस ने तैयब पर पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एसपी त्रिपाठी के मुताबिक छात्राओं का बयान दर्ज करने के बाद कुछ को नारी निकेतन भेज दिया गया है, जबकि कुछ के माता पिता उन्हें अपने साथ घर ले गए। विकास चंद त्रिपाठी के मुताबिक मदरसे में 125 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन जिस समय पुलिस ने छापा मारा उस वक्त वहां 51 छात्राएं ही मौजूद थीं, बाकी घर चली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मदरसे में छात्राओं का एक हॉस्टल भी है, लेकिन किसी तरह के नियम कायदे का वहां पालन नहीं हो रहा था। यहां तक कि छात्रावास की देखभाल के लिए कोई महिला तक नियुक्त नहीं थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मदरसे के मालिक कोई और हैं, जबकि तैयब को उन्होंने इसका संचालक बना रखा था। ये शिकायत भी पुलिस से उन्होंने ही की थी।
हम लोग गुजर रहे थे तो एक पर्चा ऊपर से आया, तो ऊपर देखा कि मतलब को पर्चा खिड़की से आया, तो उन्होंने उठाया उसको देखा। देखने के बाद में थोड़ा सा हम लोग को एक शौक लगा, और जो इस मदरसे के ओनर हैं मीन मालिक हैं वो हजरत जिलानी मियां, तो उन्होंने ये अपने मैनेजर को दे रखा था, इसको करीब लगभग ये 9-10 साल से ये चला रहा था। ये
आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि मदरसा संचालक तैयब किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे।
अब अंदर भी नहीं किसी को जाने को मिला, इतना अकेले ही सारा काम हुआ है। एक पच्ची मतलब बात हुई, अंदर भी कोई दबाव की बात जी जो भी भाई हुई किसी को नहीं पता।
उसके मिलने जुलने वाले आते थे, बाहर के आदमी आते थे, यहाँ वाले को अंदर नहीं जाने देता था, ना किसी से ज्यादा वो बात करता था। मतलब जो भी वो करता था अंदर भाई हम लोग को पता नहीं, लड़कियाँ पर्चे फेंकती थी, उनके साथ गैर दबाव डाला जा रहा था, उसको मजबूर करते थे, मारते पीटते थे।
हालांकि कुछ स्थानीय लोग इस मामले में संपत्ति विवाद भी देख रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि पुलिस को कई पत्र भले ही हाथ लगे हों, लेकिन उन्हें लिखने वाली लड़कियां एक दो ही हैं। इन पत्रों और पीड़ित छात्राओं के नाम सार्वजनिक करने को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानसी दास, ये बताने के लिए कि दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं।
साल का आखिरी दिन, पहले बात करते हैं बहते पानी के जमने की। एक तस्वीर है जो नई दुनिया ने छापी है, ये तस्वीर है अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध नायग्रा फॉल्स की तस्वीर जो जम गया है। अमेरिका में पारा -47 डिग्री तक पहुंच चुका है।
और भारत में,
भारत की एक तस्वीर भी बता देती हूँ। कोलकाता में गंगा नदी पर एक सुनसान फेरी खड़ी है, ये तस्वीर छापी है दी हिंदू ने। लिखा है कि कोहरे के कारण फेरी सेवाएं शुक्रवार को बंद रही
और दिल्ली आने वाली ट्रेनें भी लेट हो रही हैं।
दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। और कुछ और खबरें भी आपको बता दूं। पहले शुरुआत करते हैं जनसत्ता में छपे इरफान के कार्टून से। अच्छे दिन पर इन्होंने जो है तंज कसा है, और एक व्यक्ति है जो डंडा पकड़ के एक बाबा के पीछे खड़े हैं और बोल रहे हैं ढोंगी इस बार फिर से कह रहा है अच्छा साल आ रहा है। आगे बात गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन गुजरात अब भी अखबार में सुर्खियों पर है। मामला कुछ ऐसा है कि विभागों के बंटवारे से नाराज उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शनिवार को कार्यभार नहीं संभाला, और इस बीच चर्चा चल रही है कि गुजरात भाजपा में थोड़ा असंतोष है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने उन्हें पटेलों के अपमान के विरोध में 10 विधायकों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। अखबारों में अब मेघालय की खबरें भी छप रही हैं, जहां की सरकार का कार्यकाल मार्च 2018 में।
मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य जिसकी खबरें बहुत ही कम
अखबारों में दिखती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर है जिसके अनुसार मेघालय में कांग्रेस के 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेघालय कांग्रेस का पुनर्गठन किया और 13 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई है और सेलेस्टाइन लिंगदोह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोर्ड मानने से इनकार कर दिया है। IMC ने सिफारिश की है कि इन छात्रों को नीट परीक्षा में बैठने की इजाज़त ना दी जाए।
माने जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं
बारहवीं
जिन्होंने 12वीं पास की है उनका भविष्य अनिश्चितता में चला जा रहा
है। इस पर फिलहाल सरकार बात कर रही है तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है जिसके अनुसार साल 2016 में दिल्ली में सांस की बीमारी की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े में 40% का इजाफा हुआ है। 2016 में सांस की बीमारी के कारण 9,139 लोगों की मौत हुई है। इस साल दिल्ली में बीते दो दशकों में सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिला है। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई के लोअर परेल इलाके में कमला मिल्स में के दो रेस्टोरों में आग लगने के बाद BMC ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है और 314 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिए हैं। साथ होटलों को भी सील किया गया है।
मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो अवैध निर्माण जिस तरह से तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये लीपापोती करने का काम है कि असल अपराधियों तक पहुंचा नहीं और वो अपनी गलतियां छुपा बैठे और अब बुलडोजर चला के एक तरह से लीपापोती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानसी दास समाचार पत्रों की सुर्खियाँ और चर्चा करने के लिए। श्रोताओं को याद होगा पिछले साल बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात काफ़ी चर्चा हुई साल नया साल शुरू होने के बाद, जहां कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। अब इस एक साल बाद, घटना के एक साल बाद बेंगलुरु की महिलाएं क्या सोच रही हैं इस समय और प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, बता रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
पिछले साल बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात को हुए हादसे पर बहुत बड़ा बवाल मचा था। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक बहुत सारी महिलाओं के साथ महात्मा गांधी रोड ब्रिगेड रोड जंक्शन पर छेड़खानी हुई थी, लेकिन BBC से सिर्फ दो महिलाएं ने इस खबर की पुष्टि की थी और उसमें से भी सिर्फ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इस साल कोई महिला इस मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, रेडियो के लिए ये भी नहीं कहना चाहती हैं कि वो नए साल की पार्टी में बाहर नहीं जाएंगी। उनमें से दो तीन महिलाएं ये भी साफ तौर से कह दी कि वो पिछले साल के वाक्या या जो भी अखबार में रिपोर्ट किया गया था उससे वो डर गई हैं। हमारे से सिर्फ एक महिला रेडियो के लिए बात करने के लिए तैयार थी, उनका नाम है इशिता, जो एक HR प्रोफेशनल है। उन्होंने कहा,
The only reason I might not go back is if there isn't
हाँ, हम फिर से वही इलाके में जा सकते हैं। दरअसल हमारे परिवार में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे किसी भी तरह का संकोच नहीं होगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि जो कुछ पिछले साल दूसरों के साथ हुआ वो कहीं भी और कभी भी हो सकता है, मतलब आज भी हो सकता है। इशिता अपने पूरे परिवार के साथ उस रात उसी रास्ते पर थी जब यह हादसा हुआ, लेकिन उनके परिवार के पुरुषों ने महिलाओं को बदमाशों से बचाया था और इशिता कहती हैं कि पुलिस अपना काम कर रही थी, हालांकि पुलिस को आलोचना का सामना करना पड़ा। बहरहाल इन हादसों के मद्देनजर पुलिस ने आज रात के लिए बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बेंगलुरु ईस्ट के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सीमंत कुमार सिंह ने कहा,
पूरे सिटी में करीब 15,000 हमने स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है। ये हमारे टोटल स्ट्रेंथ है जिसमें कि लोअर स्टाफ से लेकर सीनियर मोस्ट ऑफिसर तक का ये 15,000 का डिप्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो हमारी है वो हम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, डबल द स्ट्रेंथ कर दिए हैं जो हमारा नॉर्मल रहता है उससे। इसके अलावा CCTV कैमराज पूरे शहर में जो ऑलरेडी है उसके अलावा 500 से ऊपर CCTV कैमराज लगे हैं।
इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा है कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग करेंगे, मतलब ये कि बेंगलुरु के निवासियों को कहा जा रहा है कि वो एहतियाती बरतें। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7 कुछ ही पलों के बाद। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। ईरान में कई जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा ट्वीट में कहा है कि दमनकारी शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। पर्वतारोहियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नेपाल ने माउंट एवरेस्ट समेत अन्य पर्वत शिखरों पर अकेले चढ़ाई करने वालों पर रोक लगा दी है। रूसी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी पर लगे रोक के खिलाफ अपनी अपील को उनकी अपील को खारिज कर दिया है। ब्लैक लाइव्स मैटर की कार्यकर्ता एरिका गार्नर की मौत न्यूयॉर्क में एक अस्पताल में हो गई है। वो 27 साल की थी। उन्हें बीते सप्ताह दिल का दौरा पड़ा था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। अगला प्रसारण भारतीय समयानुसार 7:30 PM वर्षांत विशेष में होगा। आज भी बहुत कुछ खास राजेश जोशी के साथ। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति।